जी बिस्मिल्लाह करें, सबने उम्मीद है कि डाउनलोड कर ली होंगी। जी पांचवी आयत है, वलो अन्नहुम औजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम वलो अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुजा इलैहिम लकाना खैरल लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। जी नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 2। वा के मानी और, लव के मानी अगर। इस तरह वा के मानी और है, वा बार बार आता है, इस तरह लव भी बार बार आएगा और इसके मानी अगर है। अन्नहुम, अन्नहुम को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, इन्ना आ जाए या अन्ना आ जाए तो उसके मानी बेशक के होते हैं। इन्ना आ जाए या अन्ना आ जाए तो उसके मानी बेशक के होते हैं, बेशक यकीनन। अमूमन इन्ना जुमले के शुरू में आता है और अन्ना जुमले के बीच में आता है। अमूमन इस तरह होता है कि इन्ना जुमले के शुरू में और अन्ना जुमले के बीच में आता है। हुम जमीर है मुजक्कर गायब की, हुम जमीर मुजक्कर गायब की है, वो सब मुजक्कर। अन्नहुम बेशक वो सब, वलो अन्नहुम और अगर बेशक वो सब लोग। जी अब नेक्स्ट स्लाइड, सबरू स्लाइड नंबर 3। सबरू, सबर हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं और अमूमन गुजराती भाई और मेमन इस तरह कहते हैं कि भाई सबर करो, यानी कि इंतजार करो। तो सबर बमानी इंतजार के भी होते हैं। आपकी स्लाइड में लिखा है कि उर्दू और पंजाबी में कोई बच्चा चीज मांगे तो बड़ा शख्स उससे कहता है कि सबर करो यानी इंतजार करो। असल में कुछ अल्फाज के मानी जमाने के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं। एक जमाने में मुल्ला के मानी बड़े अदब और एहतराम से लिया जाता था, मुल्ला कारी बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। अब मुल्ला के मानी जो है वो मजाक में लिया जाता है। इसी तरह हर लफ्ज के अपने अपने मानी तब्दील होते रहते हैं। मेरे जो बुजुर्ग थे वो अब भी सबर कहते हैं, यानी सबर करो यानी कि इंतजार करो। अब हम सबर जो है वो सबर के मानी में लेते हैं। तो बहरहाल ये बात से बात निकल आई। तो सबर यानी इंतजार किया, सबरा जो है, सबर से पहले देखें अलामत मुजारे नहीं है, ना या है, ना ता है, ना अलिफ है, ना नून है। तो सबर के माने इंतजार किया और वाव अलिफ जो है वो जमा की अलामत है। वाव अलिफ, वाव नून या नून आ जाए तो वो कलमे को जमा बना देते हैं। तो सबरु उसने सबर किया, वलव अन्नहुम सबरु वा और लव अगर अन्नहुम बेशक वो सबरु सबर सबर किया। इसकी तर्जमानी हम इस तरह कर देंगे, और वो अगर यकीनन इंतजार करते, और अगर वो यकीनन सबर करते। जी अगली स्लाइड, स्लाइड नंबर 4। स्लाइड नंबर 4 चौथी स्लाइड, हत्ता उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। हत्ता यहां तक के इसके मानी है, उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। तखरुजा, खरजा देखें यह माजी है, खरजा से पहले अलामत मुजारे आ गया। तखरुजा, तखरुजा आप बाहर तशरीफ लाते, लफ्जी तर्जुमा इसका यह होगा कि तू बाहर तशरीफ लाया, लाता है या लाएगा। मगर चूंकि मुखातिब जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है, तो अदब से तर्जुमा करेंगे, आप बाहर तशरीफ। अब अगर सिर्फ मुजारे के साथ तर्जुमा करेंगे तो क्या करेंगे, आप बाहर तशरीफ लाते हैं या लाएंगे। अच्छा तखरुजा को मिलाएंगे तो तर्जुमा इस तरह बनेगा, यहां तक के आप बाहर तशरीफ लाते। इलैहिम, इला के मानी की तरफ, इलस्सू की, इलल मस्जिदी मस्जिद की तरफ, बाजार की तरफ। तो इला के मानी की तरफ, और हुम आ जाए या हिम आ जाए मानी वही है, वो तमाम मुजक्कर। तो इलैहिम उन सब की तरफ, हत्ता यहां तक के, तखरुजा आप बाहर तशरीफ ले आते, इलैहिम उन सब की तरफ। जब किसी की तरफ हमें इशारा करना हो ऐसे गुरु की तरफ जिसमें मुजक्कर और मुअन्नस दोनों शामिल हों, तो हम सीगा जो है वो मुजक्कर का इस्तेमाल करते हैं। तो अत्ता तखरुजा इलैहिम यहां तक के आप बाहर इनके पास तशरीफ ले आते। लकाना, अगली स्लाइड देखें, स्लाइड नंबर 5। पांचवी स्लाइड, लकाना, लाम दो तरह का आता है, हम पढ़ चुके हैं। एक के मानी के लिए आता है, एक के मानी यकीनन के आता है। ला प्लस काना, काना कौनो मकान, काना के मानी जो है वो होना के हैं। तो लकाना यकीनन होता, यहां जो लाम जो है वो लामे लाजिम आया है यकीनन के माने, लकाना यकीनन होता। खैरन उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, खैर बेहतर भलाई। लहुम, ला मानी के लिए, हुम उनके लिए, लहुम उनके लिए। لکانا خیر اللہم، یقیناً ہوتا خیر ان کے لیے، لفظی ترجمہ ہو گیا یقیناً ہوتا خیر، یقیناً ہوتا بہتر کے لیے ان کے، اب ہم ترجمانی کر رہے ہیں اردو کے حساب سے، تو یقیناً یہ انہی کے لیے بہتر ہوتا. یہاں جو لام آیا ہے لام لازم آیا ہے یقیناً کے معنوں میں. اگلی سلائیڈ، سلائیڈ نمبر 6. واللہ، اور اللہ، اللہ غفور اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں مغفرت کے معنوں میں، رحیم رحیم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیں غفور میں یہاں اپنے سبق سے ہٹ کے، مطلب اس میرے اس کورس کے ہٹ کے بات کرتے ہیں. غفور کا مادہ ہے غا فا اور را، رحیم کا مادہ ہے را ہا میم. اگر صرف رحیم پہ آپ غور کریں تو رحم بھی بنتا ہے، رحیم بھی بنتا ہے، رحمان بھی بنتا ہے. تو مادے ایک ہی ہوتے ہیں، مختلف اوزان پہ، مختلف سانچوں میں، مختلف دائرے پہ بیٹھے جاتے ہیں، اس حساب سے ان کے معنی میں تبدیلی آتی ہے. رحیم جو ہے وہ فائلون کے وزن پہ آیا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. یعنی ایسی صفت رحیم جب فائلون کے وزن پہ آیا ہے، یعنی رحم کرنے والا، رحم کی ایسی صفت جو ازل سے ابد تک ہے، جو کہ مستقل ہے. غفورن جو ہے وہ فعولن کے وزن پہ آیا ہے، اور سب سے زیادہ مغفرت کرنے والا، مستقل مغفرت کرنے والا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت فرمانے والے رحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں. یہ آخری سلائیڈ، سلائیڈ نمبر 7. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم واللہ غفور الرحیم. جن میں دائرے لگے ہوئے ہیں، ہم یہ سب اردو میں استعمال کرتے ہیں، وا اردو میں استعمال کرتے ہیں، صبر اردو میں استعمال کرتے ہیں، حتی خرج اخراج ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، کانا خیرن وا اللہ غفور و رحیم. اور اگر الکن لفظی ترجمہ کریں ولو، اور اگر انہم صبرو، وہ سب صبر، بے شک وہ صبر کرتے، وہ سب صبر کرتے، حتی یہاں تک کہ تخرجا آپ باہر تشریف لے آتے، الیہم ان سب کی طرف، لکانا تو یقیناً ہوتا خیر اللہم خیر ان کے لیے، وا اور اللہ، اللہ غفور رحیم مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والے ہیں. ترجمانی ہو گئی، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آنے تک صبر کرتے، انتظار کرتے، تو یقیناً یہ انہی کے لیے بہتر ہوتا، اللہ درگزر کرنے اور ہمیشہ رحم فرمانے والے ہیں. تو الحمدللہ ہماری پانچویں آیت مکمل ہو گئی ہے. اب آیت نمبر 6 آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. آیت نمبر 6 میں 8 سلائیڈز ہیں. آپ سب حضرات مجھے گرین سگنل دیں تو پھر میں شروع کروں. آیت نمبر 6. شروع کیا جائے جناب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 6 سورہ حجرات. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. جی اگلی آیت، اگلی سلائیڈ، سلائیڈ نمبر 2. اسی آیت کی سلائیڈ نمبر 2 بار بار ہم پڑھ چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے اہل ایمان. اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں. اسی آیت کی سلائیڈ نمبر 3. ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا تھا جناب، اسٹارٹ کریں پھر ہم. جناب پہلے سلائیڈ میں دوبارہ آ جاتے ہیں. آپ میں سے اکثر حضرات کو سلائیڈ نہیں ملی ہیں. تو آیت نمبر 6 پہلی سلائیڈ، سلائیڈ نمبر 1. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. अच्छा जनाब ठीक है जी सॉरी। अब दोबारा स्लाइड नंबर वन में आ जाते हैं, आयत नंबर 6। या अय्युहल लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुसबिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। अगली स्लाइड। या अय्युहल लज़ीना आमनू स्लाइड नंबर 2। या अय्युहल लज़ीना आमनू हम बार बार पढ़ते हुए आए हैं, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, यानी ए अहले ईमान ए मोमिनो। स्लाइड नंबर 3, इसी आयत की स्लाइड नंबर 3। स्लाइड 3, इन आ जाए इन के मानी अगर, अन आ जाए अन के मानी के, या अन है अन के मानी के, जा अकुम को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, जा आ प्लस कुम। जा आ को इस तरह याद कर लें जिस तरह उर्दू में कहते हैं जा आ, तो जा आ जिस तरह उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, इसी के यही मानी तर्जुमा याद करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मानी है आ जाना, आ जाए। कुम ये जमीर है, तुम सब मुजक्कर होगी, तुम सब मुजक्कर के लिए कुम है। जा अकुम फासिकुन, फासिकुन बदकार, खुदा का नाफरमान, हक व सदाकत से हटा हुआ, जो नाफरमानी के रविश पर इसरार करे। फासिक का कलमा हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। अगली स्लाइड, स्लाइड नंबर 4। स्लाइड नंबर 4, बिना बइन बा के मानी के साथ, निबा, निबा खास और अहम इत्तला जिस पर कोई नतायज मुरतब होते हैं, और खबर कहते हैं आम इत्तला को। तो यहाँ निबा के, नबा के मानी जो है वो खास इत्तला के, तो बिना बइन किसी अहम इत्तला के साथ। फता बैयनू, इसको चार हिस्सों में तकसीम किया गया, फा प्लस ता प्लस बैयनू प्लस वाव अलिफ। फा के मानी पस, ता के मानी, ता जो है वो अलामत मुजारे है, तुम मुखातिब की अलामत। बैयनू बैयनू या गैर मुश्तबा नुमाया, इस तरह कहा जाता है कि इस बात के सबूत बैयन है, यानी कि गैर मुश्तबा सबूत है, नुमाया सबूत है। वाव अलिफ जो है वो जमा की अलामत है। फता बैयनू पस, तुम मुश्तबा और जमा हो गया। अब इसका तर्जुमा हम करेंगे, फता बैयनू पस तुम सब वजाहत यानी कि तहकीक कर लिया करो। फा से पस, ता से तुम, बैयन वजाहत, और वाव अलिफ आ गया तो जमा की अलामत बन गई। पस तुम सब वजाहत यानी कि तहकीक कर लिया करो। स्लाइड नंबर 5, पांचवी स्लाइड। स्लाइड नंबर 5, तुसीबू असाबा युसीबू मुसीबतन, असाबा माजी है, उसने मुसीबत नाजिल की, युसीबू मुजारे हो गया, वो मुसीबत नाजिल करता है या करेगा। और इसके आगे एक तीसरा लफ्ज लिखा हुआ है आपके पास, मुसीबतन, इसको मजदर कहते हैं, अपने पास नोट कर सकते हैं आप पेंसिल से। असाबा माजी है, युसीबू मुजारे है, और मुसीबतन पहला मजदर है। मुसीबत हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अगर ये कहा जाए कि तुम मुसीबत में मुब्तला कर दोगे तो तुसीबू हो जाएगा, जब इसमें हम वाव अलिफ डाल देंगे तो ये जमा की अलामत बन जाएगा, तुम सब मुसीबत में मुब्तला कर दोगे। कौमन कौम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। बीजा हालतिन बा के मानी के सबब, और जहालत हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में ये कलमा मुस्तमिल है। बीजा हालतिन जहालत के सबब, इसका तर्जुमा बन जाएगा। और कॉमन से पहले अलिफ लाम नहीं लगा हुआ, इसलिए ये अब कॉमन नाउन हो गया, और अमूमन कॉमन नाउन जो होते हैं अगर वाहिद हो, सिंगुलर हो, तो उन पे तनवीन होता है, दो पेश, दो जबर या दो जेर। तो तुसीबू तुम सब मुसीबत में मुब्तला करोगे, कॉमन कौम किसी कौम को, बिजे हालतीन जहालत के सबब। अगली स्लाइड, स्लाइड नंबर 6। स्लाइड नंबर 6, फतुस बिहू फा ता सुबह प्लस वाव वाले, फा के मानी पस, ता जो है मुखातिब की अलामत है, तुस बिहू तुम हो जाओगे, ये होना होता है सुबह के मानी होना, तो तुस बिहू तुम हो जाओगे, वाव अलिफ जमा की अलामत। फतुस बिहू पस तुम सब हो जाओगे, वाव अलिफ ना हो सिर्फ फतुस बिहू लिखा हुआ है तो पस तुम हो जाओगे, और जमा की अलामत हो जाएगी फतुस बिहू पस तुम सब हो जाओगे। अगली स्लाइड, स्लाइड नंबर 7। स्लाइड नंबर 7, अला के मानी पर, माँ के मानी जो, देखिए इसके साथ ब्रैकेट में चार माँ लिखे गए, माँ के मानी जो भी होते हैं, माँ के मानी नहीं भी होता है, माँ के मानी क्या भी होता है, और माँ के मानी कितना भी होता है। इसकी टर्मिनोलॉजी इस्तेलाहात भी साथ साथ लिखे हैं। माँ मौसूला है, ये मौमूला लिखा हुआ है स्लाइड में, इसको ठीक कर दीजिएगा, स्वात आता है मौसूला, मौसूल जो के मिला देना। माए मौसूला जो, माए नाफिया नहीं, माए इस्तेफामिया किया, और माए ताज्जुबिया ताज्जुब से पूछा जाता है कितना। यहाँ जो माँ आया है ये जो के मानू में आया है, मौसूला के मानू में आया है। कॉन्टेक्स्ट या कोई सबक आपको ये बताता है कि माँ के मानी क्या है। फ़ाल तुम, फ़ाल हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, काम को कहते हैं फेल, तुम के माने तुम, फ़ाल तुम फेल किया तुमने, नादिमीन नादिम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, और यानून जो है जमा की अलामत है, वाव अलिफ वाव नून और यानून जब आ जाए तो जमा बन जाता है। नादिमीन जो काम तुमने किया इस पर शर्मिंदा, तो फ़ाल तुम नादिमीन काम किया तुम सब ने शर्मिंदा तुम सब, ये लफ्ज़ी तर्जुमा हो गया, काम किया तुम सब ने शर्मिंदा तुम सब। अब उसको उर्दू के हिसाब से हम इसके ढब में ले आएंगे, जो काम तुमने किया इस पर शर्मिंदा। जो हम कहां से लेके आए, माँ का तर्जुमा लेके आए, और पर कहां से लेके आए, अला से लेके आए। तो अला मा फाल तुम नादिमीन, अब देखें इसका सिर्फ लफ्ज़ी तर्जुमा अपने पास अगर आप नोट करते हैं, पर जो काम किया तुम सब ने तुम सब नादिम, पर जो तुम सब ने काम किया तुम सब नादिम। अब आपने लाइन में ये लिख दिया, अब आप इसको तरतीब कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, जो काम तुमने किया इस पर शर्मिंदा। जनाब अगली स्लाइड, स्लाइड नंबर 8, इस आयत की ये 8वीं स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए अहले ईमान, ए ईमान वालो, इन अगर जा अकुम तुम्हारे पास कोई आ जाए, जा आना कुम तुम सब, फासिकुन कोई भी फासिक, तो पहली शर्त हो गई कि फासिक है बिना बैन किसी खास खबर के साथ, दूसरी शर्त हो गई कि कोई खास खबर हो, कोई खास अहम इत्तला हो। फता बैनू तो बस तुम सब तहकीक कर लिया करो, अन के तुसीबू कौमम भी जहालतिन, तुम सब मुसीबत में मुब्तला कर दो किसी कौम को अपनी जहालत के सबब, फतुस भी हो और फिर तुम नुकसान कर बैठो, अला मा फाल तुम नादिमीन और फिर तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो जाओ। अहले ईमान अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई अहम खबर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम नादानिस्ता किसी गोरों को नुकसान पहुंचा बैठो और फिर तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 6 आयात मुकम्मल हो गई हैं। अब सातवीं आयत की स्लाइड आप कॉपी कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। शुरू करें, ये पहली स्लाइड आयत नंबर 7। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, वअलमू अन्ना फीकुम रसूलल्लाह, लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्रि लअनितुम ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون। ये अगली स्लाइड, स्लाइड नंबर दो। वा के मानी और, आलमु, आलमु को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। अलिफ जो है वो अमर की अलामत है, इल्म हमें पता है उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, जानना जानो जानने के मानों में आता है इल्म। जब अलिफ लग गया अमर के लिए तो अब ये हुक्म का तर्जुमा हो जाएगा, आलम तुम एक जानो, वाव अलिफ जमा बन जाएगा तुम सब जानो, आलमु तुम सब जानो। अमूमन अलिफ अमर की एक पहचान ये भी है कि जिस कलमे से पहले ये अलिफ आता है अमूमन उस कलमे में देखें वाव के ऊपर जो है वो जज़्म लग गया है, तो अमूमन जब ये अलिफ अमर की अलामत आती है कलमे से पहले तो अपने आखिर वाले हरूफ के आखिर जो हरूफ तहजी है उस पर वो जज़्म की अलामत लगा देता है, इसको जज़्म कहते हैं। देखिए वाव पे जो अलामत लगी है वो जज़्म है और ऐन पे जो अलामत लगी है वो सकून कहलाता है। जज़्म वही होता है कि जो किसी वजह से आता है, यहाँ चूंकि अलिफ अमर वाला आया है इसलिए उसने अपने कलमे के आखिर में उसको जज़्म लगा दिया, ये अलिफ अमर के पहचानने का एक तरीका ये भी है। तो वालमु और तुम सब जानो, अमर यहाँ रिवाइज करा दिया उन्होंने, तीन तरीके का होता है, मुतकल्लिम मैं, अक्तुबू मैं लिखता हूँ, इस्तेफाम क्या, अक्तुबू क्या मैं लिखता हूँ, अमर हुकुम अक्तुबू लिखो। और हम ये पढ़ चुके थे कि अमर के लिए जब अलिफ आता है तो कलमे में से हुर्फ इल्लत यानी कि वॉवल्स الف واو اور یا کو حذف کر دیتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے، اور اردو عربی فارسی میں حرف علت واویز الف واو اور یا ہیں۔ تو وعلمو اور تم سب جانو، ہاں جناب یہ پڑھ پڑھ کے معلوم چلے گا کہ اس پہ سکون ہے لگا ہوا ہے یا جزم لگا ہوا ہے۔ عموماً جو ہے وہ جزم لگا ہوتا ہے کلمے کے آخر میں، اور کلمے کے بیچ میں جو ہے وہ سکون ہوتا ہے۔ آپ جب پڑھیں گے اور تجربے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ جہاں امر آتا ہے وہاں یہ جزم لگتا ہے۔ بہرحال اگر یہ بات آپ کو یاد نہ بھی رہتی ہے تو کوئی بات نہیں، بات آئی تھی میرے ذہن میں تو میں نے آپ سے شیئر کر لیا۔ جی اگلی سلائڈ، سلائڈ نمبر 3، سلائڈ نمبر 3، انا آ جائے یا انا آ جائے، اس کے معنی بے شک، فی کم فی کے معنی میں، کم کے معنی تمہارے، تم سب ضمیر ہے مذکر حاضر کی، فی کم تم سب میں، اور کلمہ فی جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جیسے فی الحقیقت حقیقت میں، تو فی کم تم سب میں، تو انا بے شک، فی کم تم سب میں۔ اگلی سلائڈ، سلائڈ نمبر 4، سلائڈ نمبر 4، رسول اللہ، دو اسم ساتھ ساتھ ہیں، پہلے اسم پر الف لام نہیں ہے، دوسرے اسم پر الف لام ہو یا دو اسم ساتھ ساتھ آ جائے، پہلا اسم کامن ناؤن ہو دوسرا اسم پراپر ناؤن ہو، دو اسم ساتھ ساتھ آ جائیں، پہلا اسم اس میں نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو، ترجمہ کرتے وقت ہم کا کے کی کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ دوسری بات آپ نوٹ کر لیجئے کہ ترجمہ کرتے وقت ترتیب الٹ دیتے ہیں، کاف کی کی کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں اور ترجمہ کرتے وقت ترتیب کو الٹ دیتے ہیں۔ صوت کے معنی آواز، ان نبی خاص نبی، صوت النبی، صوت پہ الف لام نہیں ہے، ان نبی پہ الف لام ہے۔ پہلے تو رسول اللہ ہی دیکھیں، رسول جو ہے وہ نکرہ ہے، اللہ جو ہے وہ معرفہ ہے، اللہ نام ہے، تو یہاں ہم نے کر دیا اللہ کے رسول، اللہ کو پہلے لے کے آ گئے، رسول کو بعد میں لے کے آ گئے، بیچ میں کیل آ گئے۔ پھر صوت النبی، یہ صوت جو ہے وہ اس میں نکرہ ہے، اس میں الف لام نہیں ہے، ان نبی معرفہ پراپر ناؤن ہے، اس میں الف لام لگا ہوا ہے، ترجمہ کرتے وقت ہم نبی کا پہلا ترجمہ کریں گے، صوت کا بعد میں کریں گے اور کا کے کی کا اضافہ کر دیں گے۔ صوت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، نبی تو اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو صوت النبی، نبی کی آواز۔ وعلموا ان فیکم رسول اللہ، اور تم سب جان لو بے شک تم سب میں اللہ کے رسول ہیں، اور تم سب جان لو بے شک تم سب میں اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس کو اردو کے حساب سے کر دیں گے کہ تمہارے درمیان، تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں۔ جی پانچویں سلائڈ، سلائڈ نمبر 5، سلائڈ نمبر 5، لو کے معنی اگر، یوتی اکوم، یا علامت مضارع ہے، تی اگر صرف ٹی آ جائے اس سے پہلے یا نہ آ جائے تو وہ ماضی ہوتا ہے، اور کم جو ہے تم سب مذکر، ضمیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ یوتیو کو اگر مضارے کے چار حصوں سے کیا جائے تو کس طرح بنے گا؟ یوتیو وہ اطاعت کرتا ہے یا کرے گا، تتیو تو اطاعت کرتا ہے یا کرے گا، اتیو میں اطاعت کرتا ہوں یا کروں گا، نتیو ہم اطاعت کرتے ہیں یا کریں گے۔ یا تا الف نون یتان علامت مضارے، لو یوتیو کم، اگر وہ تمہاری اطاعت کرے، یہ یوتی ہے، یوتی کے معنی وہ اطاعت کرے، اور کم جو ہے وہ تمہاری ہو گیا، تم سب کی۔ لو اگر وہ اطاعت کرے تم سب کی، یعنی کہ اگر وہ تمہاری اطاعت کرے۔ اگلی سلائڈ، سلائڈ نمبر 6، سلائڈ نمبر 6، فی کے معنی میں، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں فی الحقیقت فی الفور، تو فی کے معنی میں، کثیرن کثرت اردو میں استعمال کرتے ہیں، اکثر کثرت، من منا من کے معنی سے، جسے ہم کہتے ہیں من جانب، اس جانب سے، الامر امر کے معنی کام، ہم استعمال کرتے ہیں امور کشمیر، امور داخلہ، کام، معاملات۔ لو یوتی حکم فی کثیر من الامری، اگر وہ اطاعت کرے تم سب کی، اکثر معاملات میں، یعنی کہ اگر بہت سارے معاملات میں وہ تمہاری اطاعت کریں، کون اطاعت کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلائڈ نمبر 7، سلائڈ 7، لعنت تم، لا یا لام لازم ہے، انت ہلاکت دشواری، تم جو ہے وہ تم سب کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لعنت تم या ला में लाजिम आया ला तो इसका तर्जुमा हम यकीनन से करेंगे, यकीनन तुम सब मुश्किल में पड़ जाओगे। वा के मानी और ला के ना लेकिन उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह अल्लाह उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अगली स्लाइड स्लाइड नंबर 8। हब्बा महबूब मोहब्बत या उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। हुब्बा मोहब्बत पसंद चाहना। हब्बा बहुत अच्छा। अब ये हा बाबा जो है ये इसका मादा है, इसको फाला के वजन पे हमने डाल दिया तो हब्बा बन गया, यानी बहुत ज्यादा महबूब बना देना। इसे काफ ता लाम कतला है, सिंपल कतला होता है कि उसने कत्ल किया, सिंपल कतला पे जब डाल देंगे फाला के वजन पे डाल देंगे, फाला के सांचे में डाल देंगे, फाला के वजन में डाल देंगे, फाला की डाई में डाल देंगे, तो इसी मादे से तर्जुमे में फर्क आ जाता है। तो कतला के मानी क्या हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े कर देना। जैसे आप देखें ऐन ला मीम मादा है, इससे इल्म भी बनता है, आलिम भी बनता है, मालूम भी बनता है, हर वजन में सांचे में डाई में आके उनके तर्जुमे में तब्दीली आ जाती है। तो ये जो ह बा बा है ये इस वजन पे बैठा है, वो वजन आपके सामने लिखा हुआ फा एन लाम और एन पर तशदीद है फाला, इससे बहुत ज्यादा शिद्दत होता है, जिस तरह कत्तला टुकड़े टुकड़े कर देना। तो हब्बा आ गया, बहुत ज्यादा महबूब बना दिया, बहुत ज्यादा का तर्जुमा आ गया। इलैकुम इला के माने की तरफ और कुम के माने तुम्हारे, इलैकुम तुम्हारी तरफ। अगली स्लाइड स्लाइड नंबर 9। अगली स्लाइड स्लाइड नंबर 9। अल ईमान, ईमान को अल ने लगा के खालिस कर दिया। अल वही काम करता है जैसे कि इंग्लिश में टी एच ई द करता है, अल जो है वो कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन कर देता है। अल ईमान असल ईमान। वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुम अल ईमान, और लेकिन अल्लाह ने महबूब कर दिया तुम्हारे लिए खास ईमान को, यानी के हकीकी ईमान को। वा के मानी और ज़ैनहू ज़ैन ज़ैन जीनत बनाना, जीनत कर दिया, सवारा सजाना उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। ज़ैनहू हु जो है वो उसकी तरफ इशारा हो रहा है, वो मुज़क्कर गायब की तरफ इशारा होता है, हम पढ़ चुके हैं। ज़ैनहू ज़ैनहू उसको जीनत बना दिया, उसको मुज़य्यन कर दिया, उसको सवार दिया। अगली स्लाइड स्लाइड नंबर 10। स्लाइड नंबर 10। फी कुलूबिकुम, फी के माने मैं, कल्ब दिल को कहते हैं, इसकी जमा बन जाती है कुलूब, कल्ब दिल को कहते हैं उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, इसकी जमा है कुलूब। कुम जो है वो तुम्हारे, तुम सब के लिए, हम पढ़ चुके हैं, जो हम पढ़ चुके हैं वही बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये जो समीरे हमें याद होनी चाहिए। फी कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में, वा के मानी और, कर रहा हा कराहत उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, काबिल नफरत नापसंदीदा, कर रहा हा। इलैकुम तुम्हारी तरफ, इलैकुम इला के मानी की तरफ, कुम यानी के तुम सब के, तो इलैकुम तुम सब की तरफ यानी के तुम्हारी तरफ। स्लाइड नंबर 11, 11वीं स्लाइड। स्लाइड नंबर 11, 11वीं स्लाइड। अल कुफ्र खास कुफ्र, अल ने जो है इसको खास कर दिया। वल फुसूका और अलफुसूक असल नाफरमानी पर इसरार, यानी फिस्क का मतलब ही है कि नाफरमानी पर इसरार किया जाए, यानी असल नाफरमान। अल इसियान खास गुना, इसियान जो है उसके माने नाफरमानी, गुना गुनागार के हैं। वकर रहा और काबिल नफरत बना दिया है, नापसंदीदा बना दिया। इलैकुम तुम सब के लिए, कुफर फिस्क और गुना। अलकुफरा वलफुसूका वल इसियान और कुफर फिस्क और गुनाह को तुम्हारे लिए काबिल नफरत बना दिया है। अगली स्लाइड स्लाइड नंबर 12। स्लाइड नंबर 12। उलाइका वो सब गायब की तरफ इशारा करना, उलाइका वो सब, हुम वो सब, दो मरतबा वो सब आ गया। उलाइका हुम, उलाइका वो सब, हुम वो सब, उन दोनों का तर्जुमा किस तरह करेंगे, उलाइका हुम वही लोग, तर्जुमे में शिद्दत आ गई है, वही लोग, इसको हिसर का मफहूम कहते हैं, दो मरतबा एक ही चीज आ गई, हमने इसको हिसार में डाल दिया, इसको कैद कर दिया, तो उसको कहते हैं हिसर का असलूब पैदा हो गया। तो उलाइका हुम वही लोग, अल राशिदून, अल जो है वो खास के लिए आया है, राशिद हिदायत याफ्ता भलाई पाने वाला, واو نون جمع کی علامت. الراشدون وہی لوگ دراصل ہدایت یافتہ ہیں. یہ وہی ہم کہاں سے لے کے آگئے؟ کیونکہ راشدون کی طرف دو اشارے ہو رہے ہیں، اولئک بھی اشارہ ہو رہا ہے، ہم بھی اشارہ ہو رہا ہے، یعنی وہ سب ہدایت یافتہ ہیں. اب اس کو مثل کے مفہوم میں پیدا لے آئیں گے، اولئک هم الراشدون وہی لوگ دراصل اصل ہدایت یافتہ ہیں. ال خاص ہو گیا، اصل ہدایت یافتہ ہے. اصل ہدایت کے معنی کیا ہے؟ وہ ہدایت جو کہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، وہی اصل ہدایت ہے اور وہ سب اصل ہدایت یافتہ ہیں. جی دیکھیں، آپ اپنے پاس پینسل سے کاغذ میں لکھ لیجئے، اولائک ہم اور الراشدون. اولائک ہم الراشدون. اب دیکھیں اس کا لفظی ترجمہ کر کے دیکھیں، اولائک کے معنی ہیں وہ سب، ہم کے معنی ہیں وہ سب، اور الراشدون کے معنی ہیں ہدایت یافتہ، ہدایت پانے والے. اب دیکھیں، اب اس کا لفظی ترجمہ آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیے، وہ سب ہدایت پانے والے ہیں. مطلب یہ بھی کہا جا سکتا تھا اولائک الراشدون، وہ سب ہدایت پانے والے ہیں، یا کہا جاتا تھا ہم الراشدون، وہ سب ہدایت پانے والے ہیں، مگر وہ سب کو دو مرتبہ ریپیٹ کیا گیا ہے. چنانچہ اب جب وہ سب آیا، تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اس ترجمے میں زور پیدا ہو گیا، اس ترجمے کے اندر حسر کا مفہوم آ گیا. حسر نکلا ہے حسار سے، یعنی کہ قید کر دینا. تو اب یہ ترجمے کو ہم نے قید کر دیا ہے، اولائک وہ سب، ہم وہ سب ہدایت پانے والے ہیں، یعنی کہ وہی لوگ دراصل ہدایت پانے والے ہیں. جیسے کہ سورہ بقرہ کی غالباً چوتھی آیت ہے، اولائک علی ہدی من ربہم واولائک ہم المفلحون. تو وہاں بھی دیکھیں، واولائک اور وہ سب، ہم وہ سب، مفلحون فلا پانے والے ہیں. وہاں بھی حصہ کا مفہوم پیدا ہو گیا، اور وہی لوگ فلا پانے والے ہیں. تو ایک ہی اشارہ دو مرتبہ آ جائے تو یہ پھر حصہ کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. جنہوں نے سوال کیا ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جناب اگلی سلائیڈ پہ چلیں، سلائیڈ نمبر 13، اس آیت کی 13ویں سلائیڈ، آخری سلائیڈ اس آیت کی. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. وَعَلَمُوا، اور تم سب جان لو، أَنَّ بے شک فِيكُمْ تم سب میں رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ اگر وہ اطاعت کریں تم سب کی، فی میں، کثیر اکثر، مِنَ الْأَمْرِ اکثر معاملات میں، لَعَنِتُّمْ تو تم مشکلات میں پڑ جاؤ گے، ولیکن اللہ مگر اللہ نے، حببہ پسند کیا، الیکم تم سب کے لیے، الایمان حقیقی ایمان، وزینہ اور اسے مزین کر دیا، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وکر رہا اور ناپسندیدہ کر دیا، کراہیت والا کر دیا، الیکم تم سب کے لیے، الکفر والفسوق والعصیان، اصلی کفر، حقیقی کفر اور فسق اور گناہ، عصیان، اولائک وہی سب لوگ ہیں، ہم اولائک ہم وہی سب لوگ ہیں، الراشدون ہدایت پانے والے. تو اس آیت میں دیکھیں، ہدایت پانے والوں کے بھی ہمیں معیار مل گیا کہ ہدایت پانے والے کون ہیں، اور ہدایت پانے والے اوپر اللہ تعالیٰ کی فضل ہوتا ہے. بندہ کچھ بھی کرے مگر فضل جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اللہ، اور دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام کے متعلق کوئی کچھ بھی کہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان کو پسند فرمایا ہے، اور کفر، فسق اور نافرمانی کو ناپسند فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل گیا کہ وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ٹھیک ہے جناب، اب سلائیڈ نمبر آیت نمبر 8. اسی بات کو الحمدللہ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 میں اس کو مزید کھولا ہے. آیت نمبر 8 کے صرف 4 سلائیڈز ہیں، ڈاؤن لوڈ کر لیجئے پلیز. ये मेरी अब तक की वाहिद क्लास है जिसमें चार सेशंस हुए हैं, चौथा सेशन चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आठ स्लाइड्स कर ली, आठ आयात कर ली। आयत नंबर आठ, चार स्लाइड्स हैं, शुरू किया जाए। जी पहली स्लाइड, फसल मिनल्लाहि वनेअमा वल्लाहु अलीमुन हकीमुन। अब आपको ये अलाम होना चाहिए कि अलीमुन का मादा ऐन लामीम है, फ़ईलुन के वजन पर आया है और हकीमुन हा काफ मीम उसका मादा है और ये फ़ईलुन के वजन पर आया है। एंड इंशाल्लाह पढ़ते पढ़ते जो है ना आपको याद हो जाएगा कि इल्म अलीमुन हकीमुन ये अल्लाह ताला के लिए आया है, अल्लाह ताला की सिफत है। तो फजल मिनल्लाहि वनेअमा वल्लाहु अलीमुन हकीमुन। अजी नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर दो, इसी आयत की स्लाइड नंबर दो, फजलन फजल सरासर फजल, और ये खास फजल होता अगर हम इससे पहले अलिफ लाम लगा दे तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ये फजल है, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं मिनल्लाह अल्लाह से, अल्लाह का वा के मानी, और नेमत नेमत हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अमूमन हम ते को खोल देते हैं और अरबी में ता को बंद कर देते हैं। तो नेमा नेमत वल्लाहु और अल्लाह ताला। अगली स्लाइड, स्लाइड नंबर तीन, स्लाइड नंबर तीन, अलीमुन अजल से अबद के जानने वाले और ये सिफत अल्लाह की जाती है क्योंकि ये फ़ईल उनके वजन पर आया है। हकीमुन हिकमत और दानाई वाले, फ़ईल उनके वजन पर आया है, अल्लाह अपनी जात की वजह से अजल से अबद तक के दाना व बीना है। और ये अली इल्म और हकीम जो है ये उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं हिकमत। ठीक है जनाब, आयत नंबर आठ की आखिरी स्लाइड, फजल मिनल्लाहि वनेअमा वल्लाहु अलीमुन हकीमुन, ये सरासर अल्लाह का एहसान और इनका इनाम है और अल्लाह अलीम हकीम है। आयत नंबर नौ, को कंटिन्यू रखना है तो बिस्मिल्लाह करते हैं। जिस आयत नंबर नौ, शैतान रजीम, स्लाइड नंबर एक, आयत नंबर नौ, वही ताइफा तानी, पहले ये गौर कीजिएगा कि इसमें मोनस किस जगह चल रहे हैं क्योंकि ताइफा जो है वो मोनस है, अरबी में ताइफा जो है वो मोनस के तौर पर इस्तेमाल होता है। जिन्स जो होती हैं, जेंडर्स, वो दो तरह के होते हैं, पहली किस्म वो होती है जो कि हकीकी होते हैं, रियल जेंडर्स होते हैं जिनकी दुनिया में किसी जबान में भी कोई इख्तलाफ नहीं होता है। मिसाल के तौर पर माँ बाप, हर किसी को पता है कि माँ जो है वो मोनस और बाप जो है वो मुजक्कर, बहन भाई, बहन मोनस मुजक्कर और भाई जो है मुजक्कर, ऊंट ऊंटनी, लड़का लड़की, ये दुनिया की किसी जबान और किसी माशरे में इसमें इख्तलाफ नहीं होता। ये होते हैं रियल जेंडर्स, हकीकी जिन्स। एक होते हैं गैर हकीकी जिन्स, मिसाल के तौर पर सूरज हमारे यहाँ मुजक्कर बोला जाता है, अहले अरब इसको मोनस बोलते हैं, दीवार हमारे मुजक्कर बोला जाता है, अहले अरब इसको मोनस बोलते हैं, गाड़ी पंखा हम उनको अमूमन मुजक्कर बोलते हैं, अहले अरब इसको मोनस बोलते हैं। ये वही बात है कि गालिबन दिल्ली वाले दही को खट्टी कहते हैं और गालिबन कोई और जो है वो उसको खट्टा कहते हैं। तो ये होते हैं गैर हकीकी जिन्स। अब ताइफा, अच्छा फिर गैर हकीकी जिन्स अहले अरब, हमें किस तरह मालूम चले कि भाई फला इसम जो है वो हकीकी है, गैर मोनस है या मुजक्कर है, यानी कि दीवार के बारे में हमें किस तरह मालूम चले कि दीवार अहले अरब मुजक्कर कहते हैं या मोनस कहते हैं, या सूरज के बारे में किस तरह पता चले कि मुजक्कर कहते हैं मोनस कहते हैं, तो उसके कुछ अलामात होते हैं। पहले तो हमने अपने पास ये बात नोट कर लेते हैं कि जितने भी गैर हकीकी जिन्स हैं वो तमाम के तमाम मुजक्कर होते हैं जब तक कि उनमें मोनस की कोई बात ना पाई जाए। अब हम पढ़ते पढ़ते हमने ये देखा कि अहले अरब अमूमन गैर हकीकी मोनस के आगे गोलता लगा देते हैं, जैसे जन्नतुन, जन्नत के आगे गोलता है। फिर हमने देखा कि उसके आगे मजीद कुछ अलामत होते हैं जैसे अलिफ हमजा वाली आती है, जैसे समा उन आसमान, या पे हमजा लगता है मगर अमूमन गोलता लगती है। उसके बावजूद कुछ गैर हकीकी मोनस ऐसे होते हैं जिनके पे कुछ भी अलामत नहीं होती, ये हमें डिक्शनरी और लुगत या पढ़ पढ़ के हमें मालूम चलता है। फिर अरबी जबान की खूबसूरती यह कि जब किसी ऐसा फाइल, ऐसे ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के मुतालिक बात हो रही है जो कि मोनस है, तो तमाम उससे रिलेटेड जितने भी वर्ब्स होंगे, जितने भी फेल होंगे, वो मुजक्कर चलेंगे। اب مونس چلیں گے, اور اگر مذکر ہے تو مذکر چلیں گے. اب اس آیت میں بہت سارے قاعدے آتے ہیں. اب میرے مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس وائٹ بورڈ نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک ایک بار لکھ کے جاؤں بتاؤں, تو میں جو بولتے جا رہا ہوں اس کو پلیز اپنے پاس نوٹ کرتے رہیے گا, اور انشاءاللہ اس کو میں اگلے کل جو ہے اس کو میں اپلوڈ بھی کر دوں گا اس وائس کو لیکچر کو. اچھا جناب, وائس بریک ہو رہی ہے. ساری باتیں لکھ کے بتاؤں جناب. شروع کیا جائے تو تعظیم علام تعلیم جو ہے وہ آپ کانٹیکسٹ دیکھیے نا, سیاق و سباق یہ بتائے گا. اب جو جہاں بھی ہمیں لام تعلیل پڑھائے یا لام لازم پڑھائے, جہاں لام لازم پڑھائے اب وہاں لام تعلیل لگا کے ترجمہ کر کے دیکھیں, ترجمہ ہی نہیں بیٹھے گا. جہاں لام لازم ہے وہاں آپ لام تعلیل ہے وہاں لام لازم کا ترجمہ کر کے دیکھیں, ترجمہ نہیں بیٹھے گا, جملہ فٹ نہیں ہوگا. تو ترجمہ کر کے بھی آپ دیکھیں گے, شروع شروع میں یہی ہوتا ہے کہ ہم دونوں جتنے بھی قاعدے ہیں سب لگا کے دیکھتے ہیں, جو فٹ ہوتا ہے وہی کانٹیکسٹ کے حساب سے چلتا ہے انشاءاللہ. تو یہ پڑھ پڑھ کے انشاءاللہ جو ہے وہ ہو جائے گا. تو میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ آپ وہ قرآن پاک لیجئے جس میں لفظی ترجمہ لکھا ہوا. تو لفظ کا ترجمہ آپ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ, صرف ایک رکو دو رکو روز پڑھیں تو وہ لفظ کے ترجمے یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو میں نے آپ سے کچھ کہا تھا اس آیت شروع ہونے سے پہلے مؤنث مذکر کے بارے میں, امید ہے کہ آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا, نہیں تو آپ جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا. تو اس آیت میں انشاءاللہ ہمیں بہت سارے قاعدے جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے. اور طائفہ جو ہے وہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے سیگے جتنے بھی چلیں گے وہ مؤنث چلیں گے. تو ساتھ ساتھ آپ یہ بھی غور کرتے جائے گا کہ جو سیگے آ رہے ہیں وہ مؤنث کے آئیں گے. تو جناب اگلی سلائیڈ پہ آ جائیے, سلائیڈ نمبر 2.